त्वमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं हे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय मां शरणं गतकल गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का क्या था
आविर्भाव
ठीक है ना
परसों
तिरुभाव ना आविर्भाव
और
आज
तिरुभाव
गोपाल भट्ट जी के सामने समय में उनके संबंध में कुछ बोलो। नरहरि प्रभु के संबंध में तुम लोग नहीं जानता है उसमें बोलो तुम एक शंकर क्या देखिए तो बोलो 5 मिनट बोलो बेसिक 5 मिनट तो नमी बोलो बहुत परिश्रम किया है संबंध में भी बतलाया ये बातें तो बहुत ऊंची हैं साधारण लोगों के लिए। उन्होंने संस्कार दीपिका और सत्क्रिया सार दीपिका और
हरिभक्ति
सत्क्रिया सार दीपिका एवं संस्कार दीपिका जो ग्रंथ लिखा जो पहले प्रकाशित नहीं थी भक्ति विनोद ठाकुर ने सब प्रथम इसको प्रकाशित किया साधारण लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने पहले ही कहा है यह संस्कार दीपिका में कैसे लिख रहा हूँ हमारे इस दीपिका को लिखने के पहले बहुत सी वैदिक पद्धतियाँ हैं जो कि गृहस्थों के लिए भगवान की तरफ में बढ़ने के लिए उपयोगी हैं। कल्लू भट्ट और सब बहुत से भट्ट हो गए हैं उन लोगों ने ये सब लिखा है वेद से उद्धृत करके किंतु वो सभी स्मार्ट क्रियाएं हैं। उसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक के लिए वो विधियां बतलाई गई हैं पद्धतियां बतलाई गई हैं जैसे कि समाज में रह करके सामाजिक अर्थ प्रतिष्ठा इत्यादि उपलब्ध हो सके इसलिए। किंतु इन्होंने इसलिए नहीं लिखा इन्होंने लिखा भगवान के एकांतिक जो भक्त हैं जो गृहस्थ जीवन में हैं किंतु हैं एकांतिक भक्त वो चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो और शूद्र हो अथवा शूद्र से भी गया बिता अंत्यज और सब हो जाति से बहिर्भूत अथवा आश्रम से भी बहिर्भूत ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास से भी इतर और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से भी इतर हो एकांतिक भक्त यदि हो तो वह अंतज शूद्र और कहीं भी कहीं कुछ न हो उन सब लोगों के लिए कल्याणकर पद्धति में लिख रहा हूँ। वो भी वेद शास्त्र से ही चयन करके उन्होंने जैसे वेद शास्त्र से चयन करके लिखा है किंतु मैं भी उन लोगों से प्रामाणिक श्रुतियों को ले रहा हूँ। मैंने विशेष करके श्रीमद् भागवत से और श्रीमद् भागवत के अनुकूल जो ग्रंथ हैं उनसे लिया है। उपनिषदों में गोपाल तापनी इत्यादि से लिया है, जो वेदांत में ग्रंथ में सबसे उन्नत हैं, श्रेष्ठ हैं, उन लोगों से हमने चयन किया है। ये एकांतिक गृहस्थ वैष्णव के लिए, चाहे वो वर्ण धर्म के अंतर्गत हो, इसके बाहर में भी आजकल ये आंदोलन चला रहे हैं शूद्रों के लिए, वर्ण विहूत व्यक्तियों के लिए। हमारे चैतन्य महाप्रभु इत्यादि ने सबसे पहले ही ये सब किया था। उन्होंने वर्ण धर्म की स्थापना की थी सबके कल्याण के लिए, तो इन्होंने भी इस ग्रंथ को इसी के लिए लिखा। किस लिए लिखा? एकांतिक वैष्णवों को भगवान के अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, यदि वो करता है तो ये नामापराध होगा, इसलिए ये सबको नहीं करना चाहिए, इससे भक्ति की हानि होती है। जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं वही लोग माता पिता समाज देवता ऋषि और सबके ऋणी होते हैं, किंतु जो लोग भगवान का एकांत आश्रय ग्रहण करते हैं और उन भगवत तत्वों में भी सबसे श्रेष्ठ जो कृष्ण तत्व है, उस कृष्ण का यदि आश्रय ग्रहण करते हैं मुकुंद जी का, तो क्या होगा? परहर्त मुकुंद
गतो मुकुंदम परिहित कर्तव्यम।
तो वो सब जितनी भी ये कर्म हैं, क्या कर्म? जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जितने संस्कार इत्यादि हैं, उसमें देवताओं की जो पूजा होती है, गणेश की पूजा, ब्रह्मा जी की पूजा, दुर्गा की पूजा, नौ दुर्गाओं की पूजा और नवरात्र इत्यादि में विवाह के समय में भी ये सब होता है। वैष्णव एकांति को ये सब नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपराध होगा। कैसे अपराध होगा? यदि राष्ट्रपति के सामने एक चौकीदार को आप बैठा करके उनसे बड़े सिंहासन पर उनकी पूजा करें, तो जिस प्रकार से वो अप्रसन्न होंगे, ऐसे ही सर्वावतारी जो कृष्ण हैं उनका शरण ग्रहण करने वाला यदि इन सब देवताओं की पूजा करता है ने? और श्राद्ध करता है, तर्पण करता है अपने पूर्वजों इत्यादियों को जो बद्ध हैं, तो इससे नवा अपराध होता है। ये सब नहीं करना चाहिए एकांतिक लोगों को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। यदि करता है तो नवा अपराध होने के कारण वो कृष्ण भक्ति से च्युत होकर के अनंत नरक में जाएगा। इसलिए उन्होंने ये शास्त्र से प्रमाण उद्धित किया, देवाश्री भूताप्त नृणांग नायम ऋणी चकंकर या सर्वात्मना
शरणम
गतम मुकुंद परिहत्य कर्तुम और नारायणो परा वेदा नारायणो पराक्षरा नारायणो
परामखा
इत्यादि और उपनिषदों से ये सब दिया। समस्त जाति जगत के ये आदि हैं कौन? कृष्ण। प्रलय करने वाले, सृष्टि करने वाले, स्थिति करने वाले महाविष्णु के भी, उनके भी मूल जो नारायण हैं, उनके भी मूल जो महाशंकर्षण है, उनके भी मूल जो बद्ध मूल संकर्षण है, यहाँ तक कि बलदेव प्रभु के भी आदि ये सर्व आदि ये सब कारणों के कारण हैं। इसलिए उनका जो एकांत रूप में शरणागत हो गया वो इन सब कर्मों के नियमों से निकल गया। उनके लिए दूसरे देवताओं की पूजा और देवियों की पूजा ये भक्ति के लिए हानिकारक है। तरह तरह से शास्त्रों का प्रमाण विधिवत दे करके इसकी स्थापना किया, ये सब नहीं करना चाहिए। यदि वो सब ग्रंथ रहते ना नहीं रहते तो मनुष्य जान नहीं पाता इन सब तत्वों। इसलिए हम लोग भी यदि भगवान कृष्ण के शरणागत हैं और शरणागत होकर के उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए जैसे और सब देवताओं की पूजा न करके उनकी करें। तो कहते हैं जैसे ये तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो वो देवता लोग अप्रसन्न हो जाएंगे, कहे नहीं वो सब इनके दास दासी हैं, भगवान की पूजा करने से ही सब देवताओं की सबसे श्रेष्ठ पूजा हो जाती है। देवताओं को पृथक रूप में पूजा जो की जाती है उससे वे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं। अप्रसन्न होकर के क्या दे देंगे? प्रेमा भक्ति देंगे न भक्ति देंगे? वो धन धान्य जगत के चीज को देंगे। किंतु कृष्ण की पूजा होने से सर्वाहरणम अच्युत्य समस्त देवताओं की ऊपर से नीचे तक पूजा हो जाती है एक कृष्ण के तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। मनुष्य पशु पक्षी कीट प्राणी देवता उपदेवता यहाँ तक ऊपर में चले जाओ ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने उनके अवतार हैं सब कृष्ण की पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी ये पूजा है। इसलिए ऐसा करने वाला व्यक्ति कुश धारण न करे, कुश धारण करके तर्पण करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, साधारण लोग दें, किंतु जो कृष्ण के अनन्य शरणागत हैं वो नहीं, क्योंकि उनकी पूजा से समस्त देवता लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं और भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं। भगवान को ही प्रसन्न करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके प्रसन्न होने से सब जगत ही नीचे से ऊपर तक क्या ब्रह्मा से लेकर के आब्रह्म स्तंभ, स्तंभ माने यहाँ के कीट पतंग क्षुद्र से क्षुद्र और वो दर ब्रह्मा तक सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये लिखा। विवाह के समय में जन्म संस्कार के समय में वो नवग्रह की पूजा करना जरूरी है, कहेंगे नवग्रह की पूजा नहीं वहां पर नवजोगेंद्र की पूजा करो नहीं? क्योंकि नवग्रह से शक्तिशाली ये नवजोगेंद्र है। जहां पर कि गणेश की पूजा होती है विघ्न विनाशन के रूप में वहां कृष्ण की पूजा करने से हो जाएगी, और नहीं तो कृष्ण ही का स्वरूप है नृसिंह देव की पूजा करो तथा एक ही हुई। इसी तरह से सब में है तो इसलिए उनके लिए नहीं एकांतिक। अब आप जाकर के यदि करें और खूब माल खाएं तब तो गड़बड़ हो जाएगा। आज राबड़ी पूरी मलाई मिल रही है इसीलिए तो देखो ललाट से निकल रहा है। समझ बूझ करके करेंगे, नहीं तो एकांतिकता से दूसरों का ये सब यज्ञ फज्ञ इधर उधर जो हो रहा है और उसमें दूसरे देवताओं का दिया हुआ है तो कृष्ण वहां से उठ करके चले जाएंगे। इसलिए ये सब बातें बतलाई गई हैं। किन के लिए? जो एकांतिक विष्णु के एकांतिक भगवान के राधा कृष्ण के शरणागत हैं, शरणागत चाहे वो शूद्र भी है अंत्यज है डोमचमार भी है मेस्तर भी है, उस समय में यदि भगवान का एकांतिक शरणागत हो गया तो वो मेस्तर शूद्र चमार मूची ये नहीं है। और दूसरी तरफ में जो ब्राह्मण है वो भगवान का शरणागत है तो उसका दिया हुआ छुआ हुआ भी मत लो, क्यों उसके संस्कार में वो सब चीजें नहीं है, तुम्हारी एकांतिक भक्ति का विनाश हो जाएगा। इसलिए तस्मै देयम् ततो ग्राह्यम् सच पूज्यो यथा है। वो शूद्र कुल में भी यदि कोई भक्त है जैसे कि व्यास जी हैं नारद जी हैं प्रहलाद जी असुर कुल में पैदा हुए, कृष्ण गोप कुल में पैदा हुए, रामचंद्र जी क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का प्रसाद कैसे ब्राह्मण लोग लेंगे,
गोप के प्रसाद कैसे लेंगे?
इसलिए कच्ची पक्की करते हैं, जब जो उन लोगों के यहाँ हम कच्ची नहीं लेंगे पक्की लेंगे, किंतु फिर भी ये सब नमा अपराध है धामा अपराध है प्रसाद के प्रति अपराध है। ये सब इन लोगों ने ग्रंथ नहीं लिखा होता ना सब गड़बड़ हो जाता। इसी तरह से और भी संस्कारों को उन्होंने देखा, उन्होंने सब संस्कारों को वैष्णव पद्धति के अनुसार में से जाकर लिखा है। वैष्णव भी गृहस्थ होंगे, गृहस्थ होना कोई अपराध नहीं है, गृहस्थ होना भी ठीक है, किंतु कैसा गृहस्थ? ऐकांत गृहस्थ हो, पत्नी संग्रह करता है भगवान की पूजा में सहायिका होने के लिए, वो धर्म पत्नी है, वो केवल रमणी नहीं है, वो अर्धांगिनी है, अर्धांग है, किस लिए? भगवत पूजा के लिए। पहले समाज हमारा ऐसा ही गठित था, इसलिए इन पुस्तकों को उन्होंने संन्यास में क्या होना चाहिए, संन्यास साधारण तरह से अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ये मंत्र उनको मिलता है, तुम भी वही हो तत्त्वमसि, तुम भी वही। उन्होंने कहा नहीं, कृष्णदास हो हम, गोपी भाव आश्रय, ये हम लोगों का संन्यास का ये संबंध है, अंदर में है कितना भजन का। इसलिए यदि संन्यास लेना भी हो तो वो संन्यास नहीं लेकर के, वो सन्यासी लोग शंकर गणेश शक्ति दुर्गा और विष्णु ये पंच देवताओं को मानने वाले पंचा उपासक कहलाते हैं। क्यों? उनका आवाहन और विसर्जन करते हैं। आवाहन विसर्जन मैंने क्या, गणेश की मूर्ति बनाएंगे, उनका पूजा करेंगे और फिर उनको जमुना जी में दे, ये आवाहन है। मिट्टी की मूर्ति बना ली, कोच बना ली दुर्गा जी का नौ दुर्गा में, और नौ दिन पूजा करने के बाद में अपनी मैया को उसमें ले करके सवारी में और ले जा करके जमुना जी के बीच में उल्टा करके फेंक देते हैं, यही मैया की सेवा है। इसलिए इनमें आवाहन और विसर्जन है। वैष्णव में आवाहन विसर्जन नाम की कोई चीज नहीं है, नित्य उनकी पूजा। हम लोग कभी भी आवाहन नहीं करते और विसर्जन नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही, ये सब अंतर है। उनकी पूजा सब अपने लिए होती है और वैष्णव की पूजा किस लिए होती है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये दोनों में अंतर है, अपने लिए कुछ नहीं होता। इसलिए इतने उद्भट विद्वान देखा जो परमार्थी, तो वो संदर्भ लिखा भी गया, उसको तो विद्वान व्यक्ति ही समझेंगे। और इन सब चीजों को साधारण क्रिया से भी भगवत प्रक्रिया होनी चाहिए, भगवान संबंधित क्रिया कैसे करनी चाहिए, ये सब क्रियाओं को दिखलाया। बहुत से लोग ऐसे हैं कि संघ के अभाव से हरिनाम कर लेते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं, गले में माला भी है, मंत्र भी ले लिया, किंतु वो वैष्णवों में शैवों में और मायावादियों में क्या अंतर है ये नहीं सकते। पंच उपासना भी करते हैं, सूर्य गणेश शक्ति इत्यादि सभी की, उनमें से कृष्ण भी या विष्णु भी एक, उनमें कोई अंतर नहीं होता। हम लोग यदि पूजा भी करते हैं तो हमारी पूजा में कृष्ण परमाराध्य हैं, उनके दास दासी के रूप में माता पिता भाई बंधु कीट पतंग चींटी तक भी पूज्य है, ये तो ले लेंगे हम लोग, किंतु कृष्ण के समान ये सभी पूजाएं इस रूप में नहीं होगा। यहाँ तक कि कृष्ण से भी अधिक पूज्य गुरु और वैष्णव होता है, इसको ग्रहण कर लेंगे, किंतु सब देवता लोग भगवान के समान हैं या भगवान ही हैं और तुम भी भगवान हो और सब कुछ भगवान है ये, इसलिए उन्होंने ये सब ग्रहण कर लिखा। इसलिए हमारा सब समाज उनका ऋणी है। आजकल ये सब चीजें नहीं समझने के कारण में लुप्त तो होता चला जा रहा है, किंतु जिसको कल्याण करना हो इन सब विचारों को ग्रहण करके एकांती के रूप में अत्यंत सहज रूप में भगवान का भजन करें, उनका जीवन सार्थक होगा। आज नरहरि प्रभु का तिरुभाव तिथि, नरहरि प्रभु माने हमारे गुरु जी के गुरु भाई, उनसे बहुत कुछ हम लोग शिक्षा लेनी चाहिए। हमने उनका दर्शन किया और तो कोई दूसरा नहीं है यहाँ जो उनका दर्शन किया हो, कोई नहीं। 1954 में वो चले गए, इसलिए 54 के बाद में यदि आए हों कोई, 1954 से पहले 1948 या 48 में वो चले गए, तो इसलिए बहुत कम है। त्रिविक्रम महाराज जी हैं, पूज्य पद बामन महाराज जी हैं, हम हैं और
हरिजन महाराज,
हमारे समय से नहीं, हरिजन महाराज सुधाम इत्यादि कोई नहीं, एक गोविंद था, गोविंद बाबा जी वो चला गया और कोई नहीं। वो पढ़े लिखे नहीं थे अभी, बचपन में 10-12 वर्ष की उम्र में घर से चले आए। जाति तो नहीं लेना चाहिए कहना चाहिए, फिर भी जाति का यदि दिया जाए तो कायस्थ कुल में आविर्भूत हुए थे, देखने में ठीकने से थे। क्या हो रहा है, कोई गिर गए देखिए तो बंद तो कर दीजिए, उधर का भी बंद कर। कहाँ कहीं बाहर का हो रहा है यहीं बेटा ये चल जालिए तो गैस लाइट अरे गैस टा जालिए दो ना खोल गा होता क्यों है चलो गैस टा जलाइते पारे ठाकुर घर तक गैस अच्छे पूरा ओखने नहीं क्यों কোথায় গেল নিচে কিছু গড়বড় হয়েছে রাতা নরহরি প্রভু কাজ জীবন সংক্ষেপ মে বতলাউঙ্গা क्योंकि हम लोगों को एक जगह भी हमारे राम प्रकाश चुनी भूसी वाले जी के यहाँ उनके लड़के के यहाँ कीर्तन है अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे इसलिए उनका जीवन चरित्र आज संक्षेप में बतला रहा हूँ थोड़ा सा वो कायस्थ कुल में आविर्भूत हुए 12-14 वर्ष की उम्र में वे एक तो पीछे कर दो लाइट के देखने पीछे दिया दोनों हमको आँख में न लगे वो पढ़े लिखे बहुत कम थे बचपन में ही घर छोड़ करके आए जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी आरंभ किया प्रचार उस समय में श्री मंदिर में प्रभुपाद जी इनको लगाया पुजारी के रूप में ये पूजा करते थे और अपने वो कांसर बजा करके ये सब हरिनाम संकीर्तन किया करते उस समय बहुत कम लोग आए थे मठ में हमारे गुरु महाराज जी उस समय में उनके बाद में आए पढ़े लिखे नहीं थे किंतु जितने भी मठ के सन्यासी थे बड़े बड़े बड़ा वक्ता विद्वान उनके चरणों की धूली अपने सिर पर लगाते थे क्यों लगाते थे पढ़े लिखे नहीं थे भाषण भी नहीं देते थे किंतु उनके उपदेश अमूल्य होते थे प्रभुपाद जी की सेवा उन्होंने इस प्रकार से की जो सब लोग उनको अपना बड़ा गुरु भाई या शिक्षा गुरु के रूप में उनको मानते थे हमारे गुरु महाराज जी से उनकी बड़ा ही सख्त भाव था तुम्हारा ऐसा तू ही इत्यादि परस्पर बोलते थे यहाँ तक कि देखा है हमने नवदीप मठ का उस समय में मठ कमांडर वो थे नरहरि प्रभु और गुरु महाराज तो सबके आचार्य थे किंतु गुरु महाराज जी जब चुचुड़ा से या प्रचार से आते थे तो ये अपनी छोटी सी बांस की एक चौकी बनी थी बांस की ना? और उसी चौकी पर ये दे दिया था पट्टे कुछ रख दिए थे लकड़ी के चीरे हुए वो भी बनाया हुआ नहीं ऐसे ही उसी पर इनका बिछौना वो बिछौना हटा देते और गुरुजी का बिछौना उस पर कर देते और पास ही में नीचे वो सो जाते ना? और उन्हीं से गुरु महाराज परामर्श करते और सब कुछ काम गौड़ीय वेदांत समिति का चलता वो रात में कब उठते कुछ भी ठीक नहीं सब समय जगते ही रहते छोटे छोटे बच्चे हमारे बामन महाराज जी भी उस समय बच्चे जब आए तो नरहरि प्रभु जी रात में इनको उठा करके पेशाब करने के लिए पैखाना करने के लिए ले जाते थे और यदि कोई बच्चा ऐसे सोया हुआ है तो उसको अपना चादर उड़ा देते या उसका रजाई इधर उधर हो गया है उसको उठा और खिलाते पिलाते सबका पालन पोषण करते इसीलिए प्रभुपाद जी ने इनको मठ की मैया कहते थे जो गौड़ीय मठ की मैया ये नरहरि प्रभु जी हैं निरंतर हरि नाम करते चलते फिरते उठते बैठते माला से ऐसे एक मिनट का भी समय बर्बाद नहीं होता मोहल्ले के जितने लोग थे सब उनके परिचित थे, सबके घर में जाते, सुख में जाते दुख में जाते, उनसे पूछते, कोई जरूरत होती तो उनको दे देते। हमको याद है जब मैं मठ में आया तो वो देखते जी इसको भूख लगी होगी जरूर, उस समय मैं 25-26 वर्ष का था, नौकरी छोड़ करके आया था, तो उस समय में हमको इशारे से जैसे और कोई ना देखे ऐसे ऐसे बुला लेते, खेजूर का गुड़ और मूढ़ी दे करके कहते जी यहीं पर बैठ करके चुप से खा लो ना, और खिला करके बर्तन वर्तन धो देते, ऐसे स्नेह करते मानो सब लोग समझते थे जो हमको ही सबसे अधिक स्नेह ये करते हैं, सब लोग उनके स्नेह के भूखे रहते, ऐसा उनका जीवन चरित्र था। यही समझो जी हमारे गुरु महाराज जी इतने बड़े भारी दार्शनिक वेदांतिक और प्रसिद्धाचार्य, किंतु बिना उनके परामर्श का कुछ नहीं करते थे। जब वो चले गए इस लोक से तो गुरु महाराज जी सब समय रोते रहते थे, सब समय रोते रहते थे। एक समय में नरहरि प्रभु के एक भतीजा थे, वो कलकत्ते में वो लोग रहते हैं अभी भी, अब तो वो भी गत हो गए। एक बार कह रहे थे जे नरहरि प्रभु मायापुर के मठ के इंचार्ज थे, सब के वही मूल मठ था हमारा सोल वर्ल्ड का, मायापुर वाला जहाँ महाप्रभु जी का जन्म हुआ है वहीं पर चैतन्य मठ, तो उस सब के मालिक ये नरहरि प्रभु को प्रभुपाद जी ने बना रखा है, देखना सुनना व्यवस्था करना सब कुछ, और इनके ऊपर में हमारे गुरु जी को रख दिया था व्यवस्थापक रूप में। वो तो अभी सब मठों के थे किंतु इस यहाँ पर भी रहते थे और ऊपर का सब देखना सुनना सब ये करते थे। तो उस समय में वो कह रहे थे कि एक बार मैं जबकि 10-15 वर्ष का हुआ तो घर से मैं भाग करके चला गया उनके पास में मायापुर में चला गया, तो मैंने सोचा जी हमारे काका जी हैं चाचा जी हैं या जेठा हैं, बहुत स्नेह करके हमको कुछ न कुछ देंगे और प्यार करेंगे खिलाएंगे विशेष रूप में और लोगों की अपेक्षा। तो कुछ दिनों के बाद में उन्होंने इसको प्रेम से रख करके कहा जी तुम घर जाओ। इन्होंने देखा जी हमारे पास में तो जाने के लिए पैसा नहीं, तो ये पैसा जरूर देंगे आप कुछ अधिक पैसे देंगे। वहाँ से कलकत्ता करीब करीब 75-80 या 100 मील करीब करीब होगा ट्रेन चलती थी, तो ट्रेन का किराया उनके पास नहीं, और उन्होंने देखा जो नरहरि प्रभु हमारे काका जी एक एक सी रुपये की नोट गिन रहे हैं, कितना रुपया है कोई ठीक नहीं, किस लिए सब मठों की सेवा करने के लिए प्रभुपाद जी उनके पास में रखते थे, गुरु जी के पास रखते तो गुरु जी नहीं अपने पास रख करके इनको दे देते क्योंकि उनको प्रचार में जाना होता, रखते थे। देखा जाते इतने पैसे जाने के समय में कुछ देंगे, तो बोले देख तुमने देखा जब मैं नोट गिन रहा हूँ हमारा नोट एक भी नहीं है, मैं तो एक नौकर हूँ सेवा के लिए, यदि एक पैसा भी मैंने लिया तो हमको नरक जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं इसका कोई अधिकारी नहीं हूँ, इसके प्रभु कौन है राधा और कृष्ण जी हैं जो इस मंदिर में बैठे हैं और प्रभुपाद जी इसके मूल सेवक हैं, उन्होंने सेवा में नियुक्त कर दिया है, इसलिए मैं कोई भी चीज ठाकुर जी का या गुरु जी का मैं ग्रहण नहीं करता यदि उच्छिष्ट न हो, एक पैसे का मैं अधिकारी नहीं, एक पैसा खर्च नहीं कर सकता, तुम हमारा अपना लड़का ये है ना भतीजा है ना, इसलिए संसारिक दृष्टि से मैं यदि तुमको देता हूँ तो अपने परमार्थ से मैं च्युत हो जा सकता हूँ, इसलिए तुम ऐसा मत समझना बेटा कि मैंने तुमको कुछ नहीं दिया। सुन करके ये चकित रह गए, हम लोग इस नियमों को पालन नहीं करते इसलिए भक्ति नहीं होती, और उनके चरणों में सब समय बड़े बड़े सन्यासी लोग लौटते हैं इसी सत्य के लिए और आदर्श उदाहरण के व्यवहार के, यदि हम लोगों को भक्ति लाभ करना है तो उन्हीं जैसा व्यवहार, मठ ही हमारा है। सबकी सेवा ही हमारा धर्म है। अपना भोग आत्मेंद्रिय प्रति इच्छा तारे बोली काम, काम से नरक में जाना पड़ेगा। यहाँ की एक वस्तु को अपना मत समझना, कोई भिक्षा का एक पैसा भी यदि तुमने अपना समझ करके खर्च किया तो गृहस्थों की अपेक्षा कोटि गुण अधिक रूप में तुमके लिए अनंत नरक का ठेका लेना पड़ेगा। ये समझ लो इस बात। जब घर छोड़ करके आए तो सभी आसक्ति छोड़ करके आए, अब कृष्ण की चीजें ही हमारी अपनी है, वो कृष्ण की सेवा के लिए, गुरु वैष्णव की सेवा के लिए, इस चीज को अच्छी तरह से समझ करके हम भजन करना चाहिए। उनके जीवन में ऐसा देखा, दिन रात व्यस्त रहते हैं किस लिए, वैष्णव और भगवान की सेवा के लिए, उनका सर्वस्व जीवन ही भगवान की सेवा के लिए अर्पित है। देखने से मालूम होता था इनका जीवन शरणागत जीवन है, एकांतिक भक्त हैं, और महाप्रभु और गुरु जी की और सब लोगों की इन पर कृपा है। तो ऐसा ही भजन होना चाहिए। जो जो उनके संपर्क में आया ना, हम करीब करीब 3-4 महीने उनके साथ में रहे थे, किंतु उसी के अंदर में इतना प्रभाव पड़ा जो उनके जीवन का प्रभाव से ही हम लोग आप तक जीवित रह रहे हैं। कैसा वैष्णवों का व्यवहार होना चाहिए, मठ की सेवा कैसी होनी चाहिए, ये सब उनके जीवन में नहीं था। आज देर हो गई अधिक, इसलिए अधिक जानने पर भी मैं उनके संबंध में नहीं कह सका, किंतु वो हमारे ऊपर में कृपा करें, आप लोगों के भी ऊपर में कृपा करें, जब वैसा ही आदर्श भगवत भय जीवन हम लोगों का हो सके। आज यही कह करके वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अभी आरती होने के बाद में हम लोग चलेंगे, आप लोग चलेंगे, थोड़ी देर के बाद में मैं आऊँ।
सचेतपुत्रूपम तस्याग्रजगुरीपुरी माकुंडम गिरीवर महोराधिका मासम प्राप्त यशया पंचाकुभ्य पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महावदन्नाय कृष्ण प्रेम गायसि कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरत्विषे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वसुते प्रणमामि। हा देवी काकू हरगत जाचे भक्त भगवत अंगश्यामलिं जटाभिरभितो मन्देतुतिन्देवन जग्रीयागुरोचसंविदमितं वरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामो राधास्कन्दनिवेशितो जलभिरं ध्यानं भक्त्या विहीनापराधलक्षे चित्त्वास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना विन्ते नमस्ते। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राप्तजन्तमनुते तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्यादिभा पुत्रेति तन्मयतया कर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवान् त्वयामि इति विज्ञेयाधि तन्नयमाम्।
हे गुरुदेव, हे गुरुदेव,
शिष्य बृहत भगवतां हम लोग कुछ दिन पहले बृहत भगवतामृत आरम्भ हम लोगों ने किया था। बीच में जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव या तिरुभाव तिथि आई, हम लोग उसी पर विचार करने लग गए, आगे बढ़ने लगे और फिर से आज पुनः हम लोग बृहत भगवतामृत के कुछ बचे हुए जो श्लोक हैं भागवती श्लोक उस पर विचार कर रहे हैं। श्लोक है इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूत यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्व इति मिति संस्पृशस्य रे मिरे। एक श्लोक आया है भक्ति जीव गोस्वामी जी ने, ये बतलाया ये या पितिर अभिवेकी नाम पामन सर्त सामे और इसी को लेकर चैतन्य चरितामृत का कृष्णदास जी कहते हैं अभिराय विषय ते प्रीति अभी अच्छे जी हमार से मत प्रीति हो चाहिए। ठाकुर चैतन्य चरितामृत का नहीं ये जगत एक स्कूल है, शिक्षा का आगार है। भगवान ने इसकी सृष्टि शिक्षा के लिए ही किया है, किंतु जैसे स्कूल कॉलेज को खेल तमाशा का लोग बना देते हैं, पढ़ने वाला छूट जाता है और मनमानी ढंग से उसको खेल कूद का ही समझ लेते हैं, शिक्षा का क्षेत्र नहीं रह जाता, मनमानी आचरण करने लगते हैं। बल्कि ऐसा देखा जाता है कि माता पिता स्कूल में हॉस्टलों में भर्ती कर दिया बच्चे को, जो वहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ेगा, अभी पिता माता होकर के हम शासन नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर पूरी छूट मिल रही माता पिता और लोग तो हैं नहीं देखने के लिए, वहाँ जाकर के वो अत्यंत अक्खड़ बदमाश सब कुछ बन गया। जिस भय के लिए भेजा गया था वो ठीक उसके विपरीत, किसी का कंट्रोल नहीं मान करके आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ हो गया, आवारा जिसको कहते हैं, ऐसे बहुत सामने देखे आवारा हो जाते हैं। और कुछ लड़के बड़े सुधर जाते हैं, उनका जीवन बन जाता है, कहीं भी घर में रहे बाहर में रहे अनुशासन में रहे तब तो ठीक है। इसलिए ये जगत एक शिक्षागार है, भगवान ने इसको ऐसे ही बनाया। यहाँ पर इस संसार में उन्होंने एक को उदासीन बनाया जो सब जगत से उदासीन, एक को नौकरी पेशा वाला बना दिया, ये तुम्हारे स्वामी उनका नौकरी करके जीविका निर्वाह करते हैं, दूसरे कुछ मित्र भाव के होते हैं, तीसरे माँ और पिता का स्नेह लेकर के पुत्र को आदर करते हैं, सभी लोग अपने बच्चों को जो अबोध होते हैं उनको स्नेह करते हैं। और नियम तो यही है जो विवाहित पत्नी और पुरुष परस्पर, वो दंपति परस्पर प्रेम पूर्वक रहे, पति स्त्री के अनुकूल चले और स्त्री भी सब प्रकार से पति के अनुकूल हो, उसी स्त्री को पतिव्रता हमारे शास्त्र में कह करके बड़ी उनकी भूमिका होती है। पुत्र भी पिता के अनुसार में चलता है तो पुत्र अपना सर्वस्व देख करके उसका लालन पालन करके उसको प्यार करता है। स्वामी और सेवक का भी संबंध बहुत ऊंचा होता है। आज तो नहीं कर सकते किंतु पहले ऐसे थे, अब बिरले कुछ कुछ पाए जाते हैं। बचपन में ही किसी एक सेठ के यहाँ किसी नौकर ने काम करना आरंभ किया तो वो जीवन भर उसी के यहाँ काम करता रहा और एक पैसे की बेईमानी नहीं की। और उस बनिए या सेठ ने महीना देने के अतिरिक्त भी उसके घर का पालन पोषण भी, उनके लड़कों की शादी फादी सब कुछ देना ये भी किया है। पहले तो ये उदाहरण ऐसे ही होते थे, नौकर भी घरेलू होते थे, वो जीवन भर के लिए बेचे होते थे और अपने सुख को उन्हीं के सुख और दुख में अपने को भी समझते थे और प्रभु भी उनको उसी प्रकार से आदर करते। ये संसार में ये चीज़ें देखी जाती हैं। यही चार पांच रिलेशन हैं। सब रिलेशनों को एकत्र करके विश्लेषण करने से इस संसार में ये पांच प्रकार के संबंध दिखते हैं। ये संबंध आए कहाँ से? आए कहाँ से? उस जगत से आए। उस जगत में ये संबंध पांच प्रकार के नित्य हैं, इसलिए वही सब संबंध इस जगत में किसी न किसी रूप में वो स्वाभाविक है जीवों में, वो जरूर होंगे ही। यही संबंध के अतिरिक्त छठवां संबंध क्या हम कर सकते हैं? सबको विभाग करके अंत में यही देखें, यदि संबंध है। आजकल वो सब कम देखा जाता है, सब रिलेशन सब बिगड़ करके विकृत हो रहे हैं। तो ये संबंध सब उस जगत के हैं। यदि पति पत्नी में प्रेम है, पुत्र और पिता में प्रेम है, सखा सखा में प्रेम है और स्वामी और दास में प्रीति है और एक जो किसी से प्रीति नहीं है वो उदासीन शब्द, वो ऐसी व्यवस्था कि इस उदासीन के प्रति सबकी नजर जाती है, सब इसको महान मानने लग जाते हैं। इस जगत में उस जगत में जो है सीधा, इस जगत में उसका उल्टा है। उस जगत में उदासीन का कोई महत्व नहीं है और इस जगत में उदासीन का ही महत्व अधिक है। उदासीन यदि किसी से नहीं मांगता, यदि सोता नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करता, किसी से कुछ मांगता नहीं है, चुपचाप मौन रहता है, लोग कहेंगे यही साधु है,
सिद्ध
सिद्ध महात्मा, सिद्ध महात्मा है। और उस जगत में जो सबसे ऊंचा है, इस जगत में सबसे नीचा दिखता है। उस जगत में सबसे ऊंचा क्या है? अभी तक हम लोगों ने जो बात की तभी कर रही थी, अभी 5-7-10 दिन पर के भाव की गोपियां ही सबसे श्रेष्ठ प्रेम वाली कृष्ण में वो सर्वोत्तम है। वो इस जगत में सबसे नीचा घटिया किस्म का है। माता पिता का स्नेह और सखा सखा का प्रेम और दास प्रेमी ये बीच में है, किसी न किसी रूप में जरूर संबंध होता है। अब इसको कहते हैं या पितिर अविवेकिना, जिनको विवेक नहीं। विवेक क्या नहीं है? आत्मज्ञान नहीं। मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं और कृष्ण भी नित्य हैं, ये नहीं है। वो क्या करेंगे? विशेष अनुपायिनी, उनकी प्रीति विषय में होती है। वो संसारिक माता पिता को बहुत आदर करते हैं, वो स्त्री अपने पति को, पति उसकी स्त्री को, सखा सखा को घुल मिल जाते हैं और दास अपने प्रभु को करता है। विशेष करके विषयेषु, विषय मैंने क्या, पुत्र परिवार धन इत्यादि में जैसे उसकी प्रीति होती है, कैसी अनुपायनी माने अचला अविचलित हो, वैसे ही प्रीति हमारी भगवान के चरणों में रहे, और यदि है कुछ न उपसर्पतु वो हमारे हृदय से लुप्त न हो जाए, ये प्रार्थना कर रहे हैं कौन? प्रहलाद महाराज। विष्णु पुराण प्रहलाद महाराज जी के समय भगवान से प्रार्थना कर। विषयों का विषय में जो प्रीति है अनुपायनी अचला वो हटती नहीं है, लाख आदमी कहे वो दूर नहीं हो, ऐसे ही भगवान के चरण में हमारी प्रीति। दो एक केसों में अपवाद छोड़ करके कौन सी ऐसी मैया होगी जो अपने बेटे को प्यार नहीं करती? दो एक ऐसे अपवाद हो सकता है, निष्ठुर जघन्य आसुक चित्तवृत्ति की कोई माँ हो तो अपने बेटे को संतान को प्यार नहीं करेगी, किंतु सभी लोग करते हैं। प्राय स्त्रियाँ अपने पति को प्यार करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। इसमें भी आजकल की शिक्षा से कुछ अपवाद हो सकता है। सखाओं में भी परस्पर प्रीति है, किंतु ऐसा भी अपवाद है कि अपने मित्र को जो धनी है कहीं से रुपया लाया उसको शराब पिला करके ये मथुरा में डैम पियर पार्क में उसे गोली से उड़ा दिया और उसका सर्वस्व लेकर के बहुत से धोखा दे करके मित्र अपने मित्रों का सर्वस्व हरण कर लेते हैं। ये काल का कुछ दोष है। मैं अभी भी कुछ हैं जो सखाओं के लिए अपना प्राण दे देते हैं, उनके सुख में सुखी और दुख में दुखी रहते हैं, इसका भी उदाहरण कम नहीं है। अपने प्रभु की सेवा के लिए भी बहुत से लोग हैं जो सब कुछ करते हैं, इसमें भी अपवाद अब हो गया है। जो आजकल जितनी भी अधिक डकैती लूट मार और ये सब होता है उसमें घर का घरेलू नौकर जरूर रहता है कभी कभी, इसलिए आजकल लोग घरेलू नौकरों को रखने के लिए घबरा रहे हैं। पहले जैसा नहीं जे प्राण दे देते थे, आजकल वैसा अनाशक्त व्यक्ति भी जो किसी चीज में अनाशक्त नहीं, सबसे अनाशक्त रहे एकदम त्याग वैराग्य वैसा, ये बहुत मुश्किल है देखना। तभी कह रहे हैं कि विषयों में जिस प्रकार से स्वाभाविक रूप में विषयी लोगों की प्रीति होती है, आई को लक्ष्मण से भी अधिक प्यार करने वाले हों उसकी कमी नहीं।